लाउडेटुर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि भौतिक, राजनैतिक अथवा आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न लोग भ्रष्टाचार के किसी भी प्रलोभन का विरोध करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा तिर्की और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है, जिनमें विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं, तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय हैं, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहती है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 93वें भजन के अंतिम पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। स्तोत्र ग्रंथ का 93वां भजन 5 पदों वाला लघु भजन है, जिसमें ईश्वर को विश्व का अधिपति स्वीकार कर उनकी महिमा का बखान किया गया है। भजनकार प्रभु ईश्वर को प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ्य का कटिबंध बांधे राजाओं में देखता है, जिनका राज केवल किसी सीमित अवधि के लिए नहीं है, अपितु अनंत काल तक बना रहेगा। इस भजन में इसराइल के लोगों को स्मरण दिलाया गया है कि उनके वास्तविक राजा हैं ईश्वर और कोई नहीं। भजनकार कहता है कि प्रभु राजा हैं, वे अनादि से राजा हैं और अनंत काल तक राजा रहेंगे। बाढ़ की प्रचंड लहरों ने विश्व का विनाश करना चाहा, किंतु प्रभु ईश्वर का प्रताप और उनका सामर्थ्य इन प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अतीत में प्रभु ईश्वर ने स्वतः को राजा रूप में तब प्रकट किया जब उन्होंने सृष्टि की रचना की और विश्व को स्थापित किया। उन्हीं की स्तुति होती रहे और उन्हीं के आदर में नए गीत गाए जाते रहें।
तू है चारों ओर,
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 94वें भजन पर दृष्टिपात करें। 24 पदों वाले इस भजन में प्रभु ईश्वर की न्याय प्रियता का बखान किया गया है। इस भजन में प्रार्थना की गई है कि प्रभु दुर्जनों और दुष्टों को दंडित कर अपने न्याय को प्रकट करें। इसके प्रथम 7 पद इस प्रकार हैं, प्रभु प्रतिशोधी ईश्वर अपने को प्रकट कर, पृथ्वी के न्यायकर्ता उठकर घमंडियों से उनके कर्मों का बदला चुका, प्रभु दुर्जन कब तक आनंद मनाएंगे, वे धृष्टता पूर्ण बातें करते हैं, वे सब कुकर्मी डींग मारते हैं, प्रभु वे तेरी प्रजा को पीसते और तेरी विरासत पर अत्याचार करते हैं, वे विधवाओं और परदेशियों की हत्या करते और अनाथों का वध करते हैं, वे कहते हैं प्रभु नहीं देखता, याकूब का ईश्वर उस पर ध्यान नहीं देता। श्रोताओ, इस भजन के पहले पद का प्रतिशोधी शब्द विवादास्पद है, इसलिए कि प्रभु ईश्वर प्रतिशोध नहीं लेते, वे प्रतिशोधी नहीं हो सकते, वे कभी बदला लेने की सलाह नहीं देते। यह तो भजनकार के मस्तिष्क की उपज है जो दुर्जनों से तंग आकर चाहता है कि प्रभु उनके अत्याचारों के लिए उनसे बदला ले और उन्हें दंडित करें। प्रभु ईश्वर दयालु पिता हैं, वे प्रेमी पिता हैं, वे न तो प्रतिशोध लेते और न ही दंड देना चाहते हैं। प्रभु का न्याय निष्पक्ष है, वे प्रत्येक का न्याय उसके कर्मों के अनुसार करते हैं। दुर्भाग्यवश भजनकार इतना तंग आ चुका था कि वह चाहता था कि प्रभु ईश्वर अपना कोप प्रकट करें, किंतु ईश्वर कभी क्रुद्ध नहीं होते, बल्कि सत्य और न्याय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। 94वें भजन का रचयिता ईश्वर के समक्ष दुष्टों के दुर्व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि घमंडियों और दुर्जनों को उनके दुष्कर्मों के लिए दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे धृष्टतापूर्ण बातें करते हैं, वे सब कुकर्मी हैं और डींग मारते हैं, और सबसे बदतर वे प्रभु की प्रजा यानी कि ईश्वर में विश्वास करने वालों को पीसते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर में भरोसा रखने वाले सभी लोग ईश्वर की विरासत हैं, और ईश्वर की इस विरासत पर हमला करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए। उन्हें इसलिए दंड मिलना चाहिए क्योंकि वे समाज के सर्वाधिक दुर्बल लोगों जैसे कि विधवाओं और परदेशियों पर आक्रमण करते हैं, वे अनाथों का वध करते हैं, उन मासूम बच्चों को मार डालते हैं जिनका कोई आसरा नहीं होता। एक प्रकार से भजनकार यहां शिकायत करता है कि घमंडी दुष्ट और दुर्जन अपने दुष्कर्मों में लगे रहते हैं और ईश्वर उन्हें दंडित करने के लिए कुछ नहीं करते। श्रोताओ, वर्तमान विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि 94वें भजन के इन पदों को समझने की कोशिश करें तो आज भी यही हो रहा है। प्रायः सुनने में आता है कि सत्ताधारी अपने अधीन रहने वालों को प्रताड़ित करते हैं। जिस मनुष्य के पास सत्ता और धन नहीं है, जिसकी भूमिका समाज में प्रभावशाली नहीं होती, जिसके पास अधिकारियों को भ्रष्ट करने के लिए धन नहीं होता, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है, जबकि दुष्ट अपने सभी कार्यों को अंजाम देते चले जाते हैं। आज की इस दुनिया में हमारे समक्ष वे लोग हैं जो निर्धनों को उधार देने के बहाने उनसे ब्याज पर ब्याज लिए जाते हैं, जब तक कि उनसे उनका सर्वस्व नहीं छीन लेते। इटली, यूरोप और अमेरिका में अपराध जगत के माफिया, जापान में अपराधी गुट याकूसा, अथवा एशियाई देशों में ठग अथवा किराए पर लिए जाने वाले गुंडे क्या करते हैं? वे यही तो करते हैं जिसकी चर्चा 94वें भजन के रचयिता ने की है। भजन के 6वें पद में भजनकार विधवाओं और अनाथ बच्चों की व्यथा के प्रति ध्यान आकर्षित कराता है। कहता है, वे विधवाओं और परदेशियों की हत्या करते और अनाथों का वध करते हैं। श्रोताओ, विधवाएं और बच्चे समाज के दुर्बल सदस्य हैं, जिनकी सहायता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है, किंतु दुष्ट लोग विधवाओं और अनाथों को भी नहीं छोड़ते, उनका यौन शोषण करते और मानव तस्करी के लिए उनका दुरुपयोग करते, और इस प्रकार उन पर दया करने के बजाय उनके विरुद्ध दुराचार में लगे रहते हैं। भजनकार परदेशियों की व्यथा पर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। आज विश्व में युद्धों के कारण अथवा आर्थिक अभावों के कारण कितने ही लोग अपने घरों का पलायन करने और परदेश में जीवन यापन के लिए बाध्य हैं। किंतु क्या इन परदेशियों को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन का अवसर मिलता है? सातवें पद में भजनकार कहता है कि वे यानी कि दुर्जन कहते हैं, प्रभु नहीं देखता, याकूब का ईश्वर उस पर ध्यान नहीं देता, और इसीलिए वे दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। कहता है कि दुष्ट लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि याकूब के ईश्वर अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वे उन पर अत्याचार कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु से आर्थ निवेदन करता है, प्रभु उठें और अपना न्याय प्रकट करें।
रचनाएं तेरी तुझको बखाने,
तू है